પૂજ્ય ભાઈશ્રીની જયપુરમાં તત્વ ચર્ચા.
દેખો ભૈયા કે ત્રિકાળી દ્રવ્ય કા આશ્રય સે હોતા હૈ વો તો બરાબર હૈ, મગર ઉસકા જબ સકાળ પકતા હૈ સવર કી પર્યાય કા,
હા જી,
તબ ઉસકા મુખ સ્વભાવ કી ઓર જાતા હૈ, તો સ્વભાવ કા આશ્રય સે હુઆ એસે કહા જાતા હૈ. સચમુચ તો પર્યાય પર્યાય સે ઉત્પન્ન હોતી હૈ. એસે રાગ કા આશ્રય ક્યા, પર પદાર્થ કા નિમિત્ત કા અવલંબન ક્યા તો રાગ હુઆ, કહેને મેં તો એસા આતા હૈ, તો સહી ભી હૈ એક અપેક્ષા સે. પર કા નિમિત્ત કા અવલંબન લ્યા પર્યાય ને તબ રાગ હુઆ. સચમુચ તો બાત ક્યા હૈ કે રાગ હોને કા જબ સ્વકાળ હૈ તબ ઉસકા લક્ષ્ય પર તરફ હૈ, તો પર સે પર કા લક્ષ્ય સે હુઆ કહા જાતા હૈ. એક એક સમય કી પર્યાય સત અહેતુ હૈ, લેતી હૈ તો આત્મા કા ઉલમન સે હુઆ એસે કહેને મેં આતે. સચમુચ તો સત પર્યાય હૈ, જ્ઞાન એસા જાણતા હૈ કે પર્યાય કા સ્વતા હૈ.
સમ્યક દર્શન ભી જબ હોને વાલા હોગા તબ અપની યોગ્યતા સે સ્વયં હોગા. વર આપ એસા કહેતે હૈ કે પર કી ચક્ષુ કો બંધ કર દે ઓર જ્ઞાયક ભાવ કો મુખ કર, એસા ક્યું આપ ભજન દેતે હૈ?
उपदेश बोध और सिद्धांत बोध अलग अलग होता है.
आज
उपदेश बोध में तो ऐसा ही कहने में आवे कि तेरी जो परिणति प्रसन्नमुख है वो अभिमुख कर दे, अंतर्मुख होगा हो जा तो संवत प्रकट होगा, ऐसा ही कहने में आते हैं. बाकी तो सचमुच तो ये पर्याय उसका स्वकाल से प्रकट होती है. बाकी कहने में तो ऐसा ही आवे जो परिणति प्रसन्नमुख है अभिमुख कर दे, पर का लक्ष्य छोड़ दे, પર કે આંખ બંધ કર દે, રસભાવ કે આંખ ખોલ, કહેને મેં તો એસા આતા હૈ. તો વહાં હોને યોગ હોતા હૈ એસા જિસકો ખ્યાલ આવે કે પરિણામ હોને યોગ હોતા હૈ, ઉસકી દ્રષ્ટિ પરિણામ પર નહીં રહેતી હૈ, દ્રવ્ય પર આ જાતી
જી.
દ્રવ્ય કા અનુભવ હો જાતા હૈ કે મેં જ્ઞાતા જ્ઞાતા હું એસી પ્રતીતિ, ને જ્ઞાતા હું એસા જ્ઞાન. જબ એસા જ્ઞાન હોતા હૈ તો ઓ જ્ઞાન ને એસા જાણ લ્યા કે પરિણામ તો હોને યોગ હોતા હૈ, મેં કરને વાલા નહીં હું, એસા હૈ. ભક્તો તો બુદ્ધિ છોડાને કે લીએ સમયસાર શાસ્ત્ર હૈ. હોને યોગ હોતા હૈ મહાસિદ્ધાંત હૈ. છઈ દ્રવ્ય કા પરિણામ હોને યોગ હોતા હૈ, ઉસકો કોઈ કરને વાલા નહીં હૈ. જૈન દર્શન અકર્તાવાદ હૈ. જૈન દર્શન હૈ ને આગે, અચ્છા હો ગયા. જૈન દર્શન અકર્તાવાદ હૈ. એક દફે કી બાત હૈ, પૂર્વી ખીમચંદ ભાઈ ને એક ભાઈ કો, હમરે વહાં દેવશી ભાઈ હૈ, ઉસકો કહા થા. અભી દેવશી ભાઈ ને મેરે કો અભી કહા, થોડે દિન પહેલે કી બાત હૈ, કે પૂર્વી ખીમચંદ ભાઈ ને એસા કહા એક દફે કે દિલ્હી મેં બડી ધર્મ સબ ધર્મ કી સભા હોઈ થી, સબ અન્યમતી ભી જૈન માં અન્યમતી સબ
સર્વધર્મ સંમેલન,
હા સર્વધર્મ સંમેલન, એસા મેરે કો મદદ કરના જરા, સર્વધર્મ સંમેલન કી એક સંમેલન એક ઈટા હુઆ. તો ઉસમેં બહુ ચર્ચા હોતે હોતે એક ભાઈ ખડા હોકર બોલા, જો એ દિગંબર ધર્મ વાલા હૈ પર અનુયાયી, ઉસકી સંખ્યા તો બહુ કમ હૈ, તો ઉસકો દૂસરે મેં મિલા દેના ચાહીએ, મિલ જાના ચાહીએ, દૂસરે મેં આ જાના ચાહીએ, યાને અપના અસ્તિત્વ. એસા એક ભાઈ ને ખડા હોકર કહા, તો વહાં ફૂલચંદ સિદ્ધાંત શાસ્ત્રી ભી સભા મેં થે સંમેલન મેં, તો ખડા હોકર ઉસને ક્યા કહા કે યે ભાઈ કા જો સુઝાવ હૈ ઉસકા મેં ઉત્તર દેતા કે મેરે કો કોઈ એક ધર્મ બતા દો કે આત્મા અકર્તા હો, તો જો ધર્મ અકર્તા કહેવે ઉસમે હમ મિલને કો તૈયાર હૈ. સબ ચુપ હો ગયા. કોઈ તો ઈશ્વર કો કર્તા માનતા હૈ, अने कोई कर्म को करता मानता है और दिगंबर धर्म आत्मा अकर्ता ज्ञाता मानता है। ऐसी बात है,
आत्मा अकर्ता है और कर्म करता है, ऐसा मानने में क्या विरोध है? कर्म करता है, आत्मा अकर्ता है, बात तो वही हुई ना।
वो तो दूसरी अपेक्षा से है, वो परिणाम की कर्ता बुद्धि छोड़ाने के लिए के जड़ कर्म से राग होता है, वो दूसरी अपेक्षा है। हाँ, आत्मा जो त्रिकाली सामान्य स्वभाव है वो अकर्ता है। विशेष अपेक्षा से तो जैन दर्शन कहते हैं कि जहां तक वेद ज्ञान का अभाव है तहां तक अज्ञानी जीव विशेष अपेक्षा से राग का करता है, ऐसा संबंध करना जैन दर्शन सर्वथा अकर्ता की बात नहीं, त्रिकाली दृढ़ स्वभाव की अपेक्षा से अकर्ता है। पर्याय अपेक्षा से करता, पर्याय दृष्टि से करता है, द्रव्य दृष्टि से अकर्ता है, यानी द्रव्य दृष्टि से देखने से कर्तृत्व बुद्धि छूट जाती
है। कर्ता बुद्धि टालने के बारे में एक प्रश्न है, कर्ता बुद्धि टालवामा पहला परद्रव्यो नु कर्तापणो छूटे, पची शरीर आदि नु, पची अशुद्ध परिणाम नु, पची शुद्ध परिणाम नु, आवु क्रम थी कर्ता बुद्धि छूटे छे, कि कहीं विशेष वजन एमा कई बात मा छे?
बात ऐसी है कि तब जहां तक स्थूल अज्ञान रहता है, स्थूल
जी
स्थूल कोई ख्याल में नहीं हो, तो इसके लिए दो द्रव्य की भिन्नता के लिए उसका न्याय आगम युक्ति से समझना चाहिए कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कर्ता हो सकता नहीं है, तो पर द्रव्य से कर्ता बुद्धि उसकी हट जाती है। और बाद में समझने के लिए आता है कि द्रव्य कर्म का भी मैं सचमुच करता नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, बाद में राग का करता भी नहीं हूं, क्योंकि होने योग होता है, करना मेरा स्वभाव नहीं, होता है उसको जानना मेरा स्वभाव है। बाद में शुद्ध पर्याय तक भी वो आता है कि संवर भी होने योग होता है, मैं तो ज्ञायक ज्ञाता हूं। इसे समझने में क्रम पड़ता है, समझने में क्रम पड़ता है, मगर जब अनुभूति होती है तब एक साथ सबकी कर्ता बुद्धि छूट जाती है। समझने में क्रम पड़ता है और क्रम से समझाया जाता है, क्रम से समझाया जाता है। कर्ता कर्म अधिकार में भी वो क्रम से समझाया है कि तो परद्रव्य का कर्ता नहीं है, राग का सचमुच कर्ता नहीं है।
समझने में जो क्रम पड़ता है तो ये क्रम निश्चित है कि पहले परद्रव्य का, फिर शरीर का, फिर राग का, ऐसा नक्की है क्या क्रम? इसका उल्लंघन भी हो सकता है?
सबको ऐसा नहीं है, कोई कोई तो ऐसा आता है कि ज्ञान भिन्न राग भिन्न, मैं तो ज्ञान हूं, इसमें एकदम ज्ञान में चला आ जाता है तो सब क्रम उसमें आ गया, अनुभव हुआ तो सब उसमें पर का ज्ञाता बन गया, पर भाव परद्रव्य का।
ठीक, ऐसा प्रश्न आया है कि आप कहते हैं कि जानना छोड़कर जानने वाले को जान ले, तो जानना छोड़कर जानने वाले को कैसे जाना जा सकता है? जानने वाले को भी तो जानने से ही जानेंगे, इसलिए जानने वाले को जानते समय भी जानना तो रहेगा, इसलिए जानना छोड़ने का क्या अभिप्राय है?
पर पदार्थ का अवलंबन लेकर पर पदार्थ को जानना बंद कर दे और जानने वालों को जान ले, ये बात है। जानना बंद नहीं होता है, पर का जानना बंद हो जाता है क्षण भर अनुभव के काल में, और आत्मा को आत्मा जान लेता है।
पर को जानना छोड़ने की बात है,
पर को जानने का, अपने जानने का छोड़ने की बात नहीं, अपने के जानने का तो होना चाहिए, उसमें तो अनुभव है।
एक भाई पूछते हैं कि संयोगी भाव ना हो इसके लिए संयोगों से दूर रहना चाहिए क्या?
संयोगी भाव ना हो इसलिए संयोग से दूर होना चाहिए, ऐसा प्रश्न है। स्वभाव से समझना ना तो संयोगी भाव हो ही नहीं।
उसने तो संयोग की बात पूछी थी, आपने स्वभाव की बात कही,
तो स्वभाव की बात ही करने जैसी है। संयोगी भाव कैसे छूटे? संयोग छोड़ दो तो द्रव्यलिंगी मुनि दीक्षा लेते हैं, संयोग तो छोड़ देता है, राजपाठ सब छोड़ देता है, मगर संयोगी भाव छूटता नहीं है। संयोगी भाव यानी मिथ्यात्व ममत्व भाव उठता नहीं है। ममत्व भाव तो आत्मा का आश्रय से ही निर्ममत्व परिणाम प्रकट होता है तो छूट जाता है।
आपने सुबह कहा कि कार्य अशुद्ध उपादान में होता है, तो कार्य करने वाले या जिसमें कार्य हो उसे अशुद्ध उपादान किस अपेक्षा से कहते?
जहां तक शुद्ध उपादान न प्रकट हो तहां तक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर एक अशुद्ध उपादान अनादि काल का है। अशुद्ध उपादान का अर्थ एक समय की पर्याय अज्ञानमय परिणाम, अज्ञानमय जो परिणाम है अशुद्ध उपादान है। अशुद्ध क्षणिक उपादान, वो उपादान भाव कर्म को करता है, वो भाव कर्म की उत्पत्ति का जन्म स्थान अज्ञान है, शुद्ध आत्मा नहीं है जन्म स्थान। तो अशुद्ध उपादान भाव कर्म को करता है, राग द्वेष मोह।
भाव कर्म का कार्य अशुद्ध उपादान में होता है?
अशुद्ध उपादान में भाव कर्म का कार्य उत्पन्न होता है, शुद्ध उपादान में नहीं होता, नहीं होता। एक तो शुद्ध उपादान का दो भेद, एक त्रिकाली शुद्ध उपादान और सम्यक दर्शन हुआ तो उसका नाम क्षणिक शुद्ध उपादान। शुद्ध उपादान का दो प्रकार नहीं है।
एक प्रश्न आया है कि आप जब ऐसी अमृतमयी परम सत्य वाणी का अमृत पान कराते हैं उस समय वह वाणी अंदर तलहटी तक छू जाती है, उससे हृदय का रोम रोम खिल उठता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कपड़े फड़फड़ाने लगते हैं, ऐसा लगता है कि कपड़े अपने आप फटके नीचे गिर जाएंगे, खोलना नहीं पड़ेगा, तो क्या ऐसा हो सकता है और ये किस बात का सूचक है?
वो तो उसका विचार है, उसके विचार में आया, उसने लिख दिया, वो प्रमोद आया तो प्रमोद की बात है। तो रोमांच खड़ा हो जाता है, प्रमोद आता है, इससे पार भगवान आत्मा है, उसमें अनुभव नहीं है।
टोडरमल जी ने लिखा रसपूर्ण चिट्ठी में कि रोमांच आता है।
हाँ, रोमांच आता है, बाद में क्या आता है, बात की बात करो, रोमांच छूट जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। रोमांच तो कषाय की मंदता का भाव है, अथवा तो अपना जो शुद्धात्मा की वार्ता सुनी उस समय ही अपनी अधिकता आ गई, ओहो मैं वर्तमान में परमात्मा भगवान आत्मा हूं, मेरे में राग द्वेष सुख कल्पना मेरी में नहीं है, ऐसे शुद्धात्मा की वार्ता जब सुनता है तो उसका अपना महिमा आया, अपना महिमा आता है तो रोमांच खड़ा हो जाता है, ऐसी वो उसकी थोड़ी अच्छी लायकात है। लायकात
मतलब अनुभव की लायकात पैदा करने के लिए रोमांच करना चाहिए?
नहीं, करना नहीं चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए। अनुभव करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रथम आत्मा को जानना चाहिए, ऐसा पाठ है। प्रथम क्या करना? 70वीं 18वीं गाथा में क्या आया?
जीव राजा को जान,
प्रथम जीव राजा को जानना, प्रथम रोमांच करना चाहिए कि नहीं? करने की बात ही आती है मगर जानने की बात आती नहीं, क्योंकि भाव में जानना नहीं आया तो शब्द में करता आता है। जब जानना भाव में आ जाएगा, स्थापन हो जाएगा, तो बार बार प्रैक्टिस करता है वो आत्मा। अनुभव के पहले मैं तो ज्ञाता हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, तो कषाय आपो आप, कषाय का जो उभरा था ने वो शांत हो जाता था। जैसे दूध है ना, दूध अग्नि पर हुए उबार कहते हैं, क्या कहते हैं,
उफान आता है,
उफनता है, उफान आता है, उफान आता है ने, तो वो पानी डाले तो शांत हो जाता है ने। ऐसे जब कोई भी प्रतिकूलता, देह संबंध, आर्थिक संबंध, पर संबंध कोई भी आ जावे, और आकुलता बहुत होती हो, उस टाइम भगवान आत्मा को याद करो कि मैं तो क्या था, बस वही आकुलता वही समय शांत हो जाती है। तो वो विचार मात्र से, भगवान आत्मा का विचार मात्र से ज्ञाता का ओथ लेने से, आश्रय नहीं, ओथ लिया उसने।
ओथ क्या होती है?
ओथ यानी अपना स्वरूप का याद किया, मैं तो ज्ञाता हूं उसका नाम, वो हमारी गुजराती भाषा में है।
आश्रय नहीं कहते, आश्रय में और ओथ में क्या अंतर?
फर्क है, आश्रय में तो अनुभव हो जाता है, हाँ याद किया, ओथ याने आत्मा को याद किया, स्मरण में आया, अरे मैं तो ज्ञाता बस वही समय वो कषाय की मंदता और दुख का उभरा शांत हो जाता है, नाम मात्र से स्मरण मात्र से, आत्मा का शुद्ध आत्मा ज्ञायक का स्मरण मात्र से कषाय की जो मंदता होती है और दुख जता दिखता है तो आत्मा का आश्रय करने से दुख का नाश होता है। कोई भी प्रसंग आवे, मैं तो क्या था, मैं क्या था?
आप फरमाते हैं कि नौ तत्वों में चैतन्य ज्योति है, और एक दफे छठवीं गाथा में गुरुदेव के टेप में आया था कि राग द्वेष तो पुद्गल का है क्योंकि उसमें चैतन्य की किरण नहीं है।
नहीं है, बराबर है।
तो आश्रव बंध पुण्य पाप ये नौ तत्वों में है, तो इनमें चैतन्य ज्योति है कि चैतन्य की किरण भी नहीं है, कौन सी बात से?
नहीं, उसमें चैतन्य ज्योति है, अंदर मां चैतन्य ज्ञायक ज्योति विराजमान है, पुण्य पाप का भाव भले हो मगर उसमें यानी उस रूप नहीं, उसकी उपस्थिति में भी ध्रुव परमात्मा विराजमान है, चैतन्य ज्योति है। और इधर तो पुद्गल का परिणाम नहीं कहा है, इधर तो जीव का परिणाम लिया है, नव तत्व सिद्ध करना है ना
जी,
इधर तो पुण्य पाप को जीव का परिणाम कहा है, जीव का अशुद्ध परिणाम, नव तत्व जीव का ही परिणाम है, उसमें कर्म तो निमित है, विवक्षा फेर है इधर, जीव के जीव का ही परिणाम है, वो नैमित्तिक भाव है, अजीव निमित है, तो जीव का परिणाम लेना या पुद्गल का परिणाम नहीं लेना, अपेक्षा समझनी चाहिए।
तो उसमें का अर्थ है उसकी उपस्थिति में ऐसा करना,
उसकी उपस्थिति में है बस इतना ही, उस रूप हुआ नहीं, पर्याय में पुण्य पाप है मगर देह से भाव तो पुण्य पाप से भिन्न रहा है। क्या है
एक प्रश्न है, दर्शन का लक्षण निर्विकल्प और ज्ञान का लक्षण विकल्प कहा है, तो सम्यक दर्शन के काल में तो ज्ञान को निर्विकल्प कहते हैं, तो क्या ज्ञान प्रमाण के बाहर चला गया क्या, क्योंकि ज्ञान का लक्षण तो विकल्प है और सम्यक दर्शन के काल में वो निर्विकल्प हो गया?
हो गया प्रश्न
जी,
ज्ञान का जो सामान्य लक्षण है सविकल्प है
जी,
ज्ञान की पर्याय का सविकल्प, भेद कर को जानना इसका नाम सविकल्प है, और केवल ही भगवान का जो केवल ज्ञान है ने वो भी सविकल्प है, सविकल्प का अर्थ राग नहीं लेना, भेद कर को जानना, जीव को जीव पुद्गल को पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल जो छद्रव्य है वो भिन्न भिन्न जान लेना, एक ज्ञान की पर्याय का जो स्वभाव है इस अपेक्षा से सविकल्प कहा जाता है। तो अनुभव के पहले के पीछे उसका स्वभाव तो छूटता नहीं है, सविकल्प ही रहता है, मगर अनुभव के काल में उसका नाम निर्विकल्प क्यों कहा ऐसा प्रश्न आया, स्वभाव तो सविकल्प है, स्वभाव तो छूटना नहीं चाहिए, तो निर्विकल्प क्यों कहा, कि निर्विकल्प का ये अर्थ है कि वो ज्ञान की पर्याय ने राग का संबंध छोड़ दिया, राग का संबंध छोड़ दिया एक, दूसरा द्रव्य इंद्रिय का संबंध छोड़ दिया, वो अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया, उसमें राग नहीं है, इसलिए उसका नाम निर्विकल्प है, अपेक्षा समझना चाहिए।
मतलब जब सम्यक ज्ञान का लक्षण सविकल्प कहें तो वहां राग नहीं लेना,
राग नहीं है, निर्विकल्प भी है और सविकल्प भी है, अनुभव के काल में सविकल्प का अर्थ वो ज्ञान आत्मा को जानता है, आनंद को भी जानता है, प्रतीति आई सदा उसको भी ज्ञान ने जाना, इस अपेक्षा से सविकल्प।
विकल्प में और पर्याय में क्या अंतर है?
विकल्प है वो तो एक तो राग की पर्याय का नाम विकल्प है, और एक ज्ञान की जो पर्याय ये का संबंध से खंड खंड होती है उसका नाम विकल्प है, पर्याय तो दर्शन चारित्र सुख सब केवल ज्ञान की पर्याय को पर्याय कहा जाता है, पर्याय जुदी और विकल्प जुदा, विकल्प की व्याख्या जुदी ने पर्याय की व्याख्या जुदी, अशुद्ध पर्याय को पर्याय कहा है, शुद्ध पर्याय को भी पर्याय कहा, पर्याय पर्याय सामान्य बस मगर जब विकल्प आया तब उसके साथ दो भेद होता है, या तो राग को विकल्प है का इंद्रिय खंड ज्ञान को विकल्प कहा जाता है। पर्याय तो सब गुण के पर्याय को पर्याय कहा जाता है।
दोनों में लक्षण जुदा जुदा है,
जुदा है लक्षण।
एक भाई पूछते हैं कि 10 साल पहले का ज्ञान यानी 10 साल पहले की कोई बात स्मृति में आए तो वो स्मृति ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है कि अतिंद्रिय ज्ञान?
इंद्रिय ज्ञान है, धारणा ज्ञान में से आया।
हाँ जी। फिर प्रश्न है कि स्मृति किसे कहते हैं, मात्र याद करके सुना देना या छह उपशम ज्ञान में ख्याल में आ जाना, इसको स्मरण कहते हैं क्या?
प्रतिभि ज्ञान होता है, मति ज्ञान के अंदर भेद है, अवग्रह या अवायोर धारणा, तो धारणा में जो जम गई वस्तु तो 10 साल पहले की बात स्मरण में आ जाती है। धारणा का विषय धारी रखा, भाव को धारी रखा ज्ञान ने, वो स्मरण में आ जाता है।
स्मृति का लक्षण न्याय शास्त्र में ऐसा बताया है, तद इति आकारा, तद इति आकारा ऐसा बोलते हैं, वह ऐसे आकार वाला जो स्मरण रूप ज्ञान है उसको स्मृति कहते हैं।
बराबर।
तो धारणा के आधार से होती है।
हाँ, धारणा के आधार से स्मृति। बराबर।
ऐसे मति स्मृति संज्ञा चिंता ये सब ज्ञान के भेद कहे हैं।
बराबर।
तो धारणा तो मति ज्ञान का प्रकार है।
हाँ, प्रकार।
तो उस धारणा के आधार पर स्मृति प्रकट होती
है। बराबर, ठीक है।
एक प्रश्न है कि जब सम्यक ज्ञान होता है तभी जो ज्ञान प्रकट होता है वो कोई शास्त्र का ज्ञान है या कोई दूसरा ज्ञान प्रकट होता है?
सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तो
सम्यक ज्ञान प्रकट होने पर जो ज्ञान जो
ज्ञान ज्ञान हुआ
तो वो शास्त्र का ज्ञान है या कोई दूसरा ज्ञान है?
आत्मा का ज्ञान है।
शास्त्र ज्ञान के अनुकूल है कि शास्त्र ज्ञान से कोई नई बात पैदा होती है उसमें?
नहीं, जो शास्त्र ज्ञान है उसके अनुकूल है। सर्वज्ञ भगवान ने जो देखा है उससे बाहर कोई ज्ञान आता नहीं है, सब केवल ज्ञान में गर्भित हो जाता। केवड़ी ने जेल से जाना बहुत, तो उसमें थोड़ा थोड़ा जाना, उसने थोड़ा जाना क्या नया जाना? केवड़ी जो जानता है उससे नया कुछ जाना? कुछ नया नहीं जानता।
एक प्रश्न आया है, 11वें गुण स्थान में उत्सम श्रेणी वाला आत्मा का अनुभव करता हुआ किस कर्म के कारण चित्त भ्रम हो जाता है, और जब 11वें गुण स्थान वालों का चित्त भ्रम हो जाता है तो हमारी कौन सी बात ठहरी?
ये तो तत्समय की योग्यता 11वें गुण स्थान से पर्याय की लायका तत्समय की ऐसी है कि वो नीचे गिर जाती है, तो मिथ्या दृष्टि तक भी हो जाता है। कोई कोई चौथा में आता है, कोई पांचवा में आता है, कोई छठा में भी आ जाता है, बाद में श्रेणी मानकर परमात्मा हो जाता है। चित्त भ्रम के ये अपना जो श्रद्धान है वो श्रद्धान छूटना नहीं चाहिए, उपयोग भले छूटे श्रद्धान छूटना नहीं चाहिए। सारा जिनागम का पाया श्रद्धा पर है।
इसमें साहब ये पूछना चाहते हैं,
श्रद्धा मचक नहीं खानी चाहिए? श्रद्धा में मचक
नहीं आनी चाहिए,
ज्ञान में आवे चरित्र में आवे मगर श्रद्धा में मचक नहीं आनी चाहिए।
ऐसा पूछना चाहते हैं कि वहां कौन सी गलती हो जाती है तो आप बता दीजिए ताकि हम चढ़ेंगे तो पहले ही से सावधान रहेंगे।
तो निर्विकल ज्ञान में 11वें गुणस्थान में वो पढ़ता है, नियम से पढ़ता है उत्सम श्रेणी वाला, वो तो सब केवड़ी गम्य है भाई, क्या हम बतावे, मेरा विषय नहीं है। क्यों पढ़ता है कि तत्समय की योग्यता इसकी है, इसलिए पढ़ता है, कर्म का उदय से नहीं पढ़ता है। ना ये अंतर्गर्भित योग्यता पड़ी थी ये वक्त प्रकट आई थी, ऐसा ही है।
अनुभव में और अनुभूति में क्या अंतर है?
एक ही बात है, आत्मा का अनुभव कहो अनुभूति कहो स्वसंवेदन कहो एक ही बात।
ऐसा तो नहीं है कि उपयोगात्मक को अनुभव कहते हो, परिणति में जो है उसको अनुभूति कहते हो, ऐसा तो कोई फेर नहीं है?
नहीं, ऐसा खास। हाँ, बाकी अनुभूति होने के बाद अनुभव चालू रहता है, इस अपेक्षा से परिणति ले सकते हैं। अनुभव अचिन धारा से परिणति चालू है, इस अपेक्षा से परिणति ले सकते
हैं।
ज्ञान की पर्याय बाकी अनुभव लक्ष्य प्रतीत आता है, तो वहां अनुभव चारित्र की पर्याय। लक्ष्य ज्ञान की प्रियाय, प्रतीति श्रद्धा की प्रियाय, ऐसा ज्ञान अनुभव लक्ष्य प्रतीत दिन श्रद्धा। सचमुच तो ये ज्ञान से सब जानने में आता है। आत्मा भी ज्ञान में जानने में आया तो प्रतीति हुई।
अनुभव में द्रव्य का वेदन होता है कि पर्याय का वेदन होता है?
पर्याय का वेदन।
लक्ष्य तो द्रव्य पर रहता है तो द्रव्य का वेदन क्यों नहीं?
द्रव्य पर लक्ष्य हुआ मगर लक्ष्य करने वाली तो पर्याय है और पर्याय में वितराग भाव प्रकट हुआ। तो जो भाव में वितरागता होता है वो वितरागता का फल पर्याय में आता है। द्रव्य तो वितराग की मूर्ति है, वेदन तो पर्याय में आता है। दुख का अर्थात सुख का वेदन आता है तो परिणाम में आता है। सुबह में वेदन नहीं आता है क्योंकि वो तो निष्क्रिय है। सक्रिय परिणाम में वेदन आता है।
आपने फरमाया था कि द्रव्य व्यवस्था एवं तत्व व्यवस्था को समझना चाहिए। तो ये द्रव्य व्यवस्था क्या है और तत्व व्यवस्था क्या है?
द्रव्य की बात ऐसी है कि जब छह द्रव्य है, छह द्रव्य, तो छह द्रव्य में जीव द्रव्य ले लेना। जो छह द्रव्य है ना उसमें जीव द्रव्य है। तो ये जो जीव द्रव्य है वो सामान्य विशेषात्मक है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, उत्पाद द्रव्योत्तम सत है, गुण पर्याय वत द्रव्यम है। सारा द्रव्य जो है वो उसमें से कोई पर्याय बाद नहीं करना, नहीं तो द्रव्य खंडित हो जाता है। अनादि अनंत सुदासुद पर्याय का पिंड, ऐसा जीव द्रव्य लेना। द्रव्य है वो छह द्रव्य है, उसमें जीव द्रव्य है, वो प्रमाण ज्ञान का विषय है। प्रमाण ज्ञान का विषय में युगपद द्रव्य और पर्याय दो को एक साथ जानना, उसका नाम प्रमाण ज्ञान है। ऐसा जीव द्रव्य का स्वरूप है और प्रमाण में आने के बाद परिणाम को गौण करके द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करना वो नई का धर्म है, नई का कार्य है। प्रमाण ज्ञान में भेद ज्ञान करने की ताकत नहीं है, नई ज्ञान में भेद ज्ञान करने की ताकत है। उपादेय नई में होता है, प्रमाण में है उपादेय नहीं होता है।
हाँ जी, एक प्रश्न आया है कि द्रव्य की शुद्धता का हेतु क्या है? कृपया मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 199 पंक्ति 17 उसके आधार पर द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना, उसका नाम शुद्धपना है, तो इसका क्या आशय है कृपया स्पष्ट करें।
उसका दो अर्थ है, उसका दो अर्थ है, आगम और अध्यात्म। परद्रव्य से भिन्न और अपने भाव से अभिन्न। तो अपना भाव में सब कुछ ले लेना, अपना भाव में राग भी साथ में ले लेना। परद्रव्य से जो भिन्न हुआ तो इस अपेक्षा से उसको शुद्ध कहा जाता है। प्रवर्तन सार में 189 गाथा में आया कि राग आत्मा की सत्ता में होता है, वो शुद्ध नहीं का विषय है। पर द्रव्य से भिन्न अपना भाव से अभिन्न, उसमें सब भाव ले लेना, वो आगम में आ गया, प्रमाण ज्ञान का विषय में आ गया। बाद में वो जब समय सार हाथ में आया तो उसमें निकला के 14 गुण स्थान मेरे में नहीं है, 14 मार्गना स्थान मेरे में नहीं है, ऐसा हो गया। एक ज्ञान प्रधान कथन है, मोक्ष मार्ग प्रकाश में तो ऐसा आता है कि जो राग है निश्चय से जीव का परिणाम है, व्यवहार से पुद्गल का परिणाम है। समय सार फरमाते हैं कि राग है व्यवहार से जीव का परिणाम, निश्चय से पुद्गल का परिणाम। तो दो में उसमें आखिर में ऐसा लिखा है, दृष्टि का विषय की जोरदार बात कर दिया, पराकाष्ठा अकारक अवेदक चक्षु का दृष्टांत से लिखते 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 टिका करके करके सब समाप्त होया। तब उसने लिखा कि ये जो व्याख्या हो गई सब, वो आगम और अध्यात्म दो में विरोध ना आवे ऐसे अविरोध कर समझना, और नई द्वै निश्चय नई और व्यवहार नहीं से समझना मार्मिक बात है। उसमें क्या मार्मिक बात है? जब अकारक अवेदक में ज्ञायक हूं ऐसा जब ज्ञायक का अवलंबन हुआ, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, तो वहां तो ऐसा आया कि बंध और मोक्ष का कारण मैं नहीं हूं, मैं कर्ता भी उसका नहीं हूं, ऐसा आया। मैं बंध मोक्ष का कर्ता नहीं ने कारण भी मैं नहीं हूं ऐसा आया ने, तो जब ज्ञायक पर दृष्टि हुई, अनुभव हुआ, ध्येय का ध्यान आया, तो ध्येय का ध्यान के साथ साथ सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, अध्यात्म प्लस अभी आगम आता है। सम्यक ज्ञान में ऐसा जान लिया कि राग का कर्ता है, कर्ता धर्म मेरे में है, तो मेरी परिणाम का धर्म है कर्ता, मेरा नहीं। पर्याय में सभी तो दशा आया, राग आया, जान लिया कि ये आत्मा का परिणाम था, ये धर्म है, उसको जान लिया, संवर हुआ, वो भी परिणाम का धर्म है, ऐसा जान लिया। अशुद्ध उपादान को जाना, क्षणिक शुद्ध उपादान को जाना, त्रिकाली शुद्ध उपादान को जाना, अध्यात्म और आगम का बराबर मेल बैठता है। अध्यात्म कहता है कि उत्पाद वैसी रही थे आत्मा, अनुभव कर ले ध्रुव का, ध्रुव का अनुभव किया, जाना कि उत्पाद वैसे रहित अन्य हूं तो भी मैं उत्पाद से सहित हूं, ऐसा आगम का ज्ञान साथ में हो जाता। अध्यात्म और आगम नहीं द्वै, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, अनुभव के काल में दो नई का वो ज्ञाता बन जाता है, पक्षपात छूट जाता है, दो नई का ज्ञाता है, विकल्पात्मक नई नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान ने द्रव्य और पर्याय को युगपत जान लिया, जैसा परिणाम का स्वभाव है वैसा ही जाना। ज्ञान किसको कहे, ज्ञान में कोई पक्षपात नहीं है, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। आगम और अध्यात्म दो जान लिया, वो आगमी भी है न अध्यात्म भी, हाँ सब है, राग भी है न वितराग भाव भी है, राग का अकर्ता भी है न राग का कर्ता भी है, दुख का भोक्ता भी है न भोक्ता भी मैं हूं। बोलो, हा अलौकिक अपूर्व चीज है। पंचाध्याय ने किया एक गाथा है कि ये जीव है वो सकवा और पर का कर्ता भोक्ता हो के न हो, मैं तो तात्पर्य है कि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, उसमें सब धर्म का स्वीकार कर लिया, कोई धर्म का निषेध आश्रय के लिए निषेध है, जानने के लिए निषेध नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन मर जाएगा। ये अध्यात्म की बात कच्चा पारा है, कच्चा पारा जो पचे तो अमृत जैसा है, कच्चा ही कच्चा खाई लेवे तो फूट जावे, ऐसी बात है।
जब पर्याय में पर्याय का अनुभव होता है, ध्रुव का नहीं होता, तो पर्याय अपने को मैं ध्रुव हूं ऐसा क्यों मानती है?
पर्याय ऐसे मानती थी कि मैं पर्याय हूं, तहां तक दुख आता था, अभी उसने पलटा किया कि ये दुख तो मेरे को नहीं चाहिए, सुख का रास्ता क्या है, तो उसको ज्ञानी मिला कि ध्रुव में हम बुद्धि कर ले, परिणाम को कहा, ध्रुव को नहीं कहा, ध्रुव तो सुनता ही नहीं है, पर्याय को कहा कि पर्याय, जब पर्याय में हम बुद्धि करती थी तो ज्ञानी के पास जाकर उसने अज्ञानी ने कहा कि महाराज मेरे को दुख का नाश और सुख का उपाय कोई बताओ, तो के देख पर्याय, तो पर्याय में बुद्धि मत छोड़ दे, मैं पर्याय में हूं, पर्याय का लक्ष्य छोड़ दे, पर्याय में मन तो छोड़ दे और ध्रुव में हूं, ऐसा कर, अच्छा मैं ध्रुव हूं, मैं मेरा विस्मरण कर दू, कहा कर दे और करके देख तो सही, सुख आता है कि दुख, जो सुख आता है तो मेरी बात सच्चे मान ला, अनुभव के प्रमाण करना, उसने ऐसा किया, मैं ध्रुव हूं, जहां मैं ध्रुव हूं तब परिणाम में आनंद आने लगा, निर्विकल ज्ञान में से बाहर आकर लंबा होकर नमस्कार किया, आपकी बात सही है। ध्रुव मैं हूं, पर्याय में ध्रुव पर्याय ने पहला देहादि रागादि में अहम बुद्धि करती थी, और पर्याय पलट कर ध्रुव में अहम बुद्धि किया। ध्रुव में अहम बुद्धि करने से पर्याय ने द्रव्य को भी जाना अने पर्याय ने पर्याय को भी जाना कि ये द्रव्य है न ये पर्याय है, दोनों को जान लिया।
इसमें एक प्रश्न है साहब।
बोलो।
कि ध्रुव भी जो है वो भी वस्तु का एक अंश है।
अंश है।
और परिणाम भी वस्तु का एक अंश है।
अंश है, दो मिलकर अंश होता है। बोलो।
ध्रुव के आलम्बन से सुख होता है और परिणाम के आलम्बन से दुख होता है, मतलब आधी वस्तु दुख का कारण है और आधी वस्तु सुख का कारण है, ऐसा क्यों है?
अपनी विपरीत बुद्धि दुख का कारण है, सच्ची बुद्धि सुख का कारण है। द्रव्य और पर्याय दुख सुख का कारण नहीं है। वसंत भाई
परिणाम का आलम्बन छुड़ाते हैं ना, तो परिणाम भी तो वस्तु का धर्म है, तो उसका आलम्बन क्यों छुड़ाते हैं?
क्योंकि पर्याय नाशवान है। अपने को जो पर्याय बुद्धि रहती है तो नाशवान है, तो पर्याय का नाश से दुखी होता है, पर्याय की उत्पत्ति में सुख की कल्पना आ जाती है। सुख की कल्पना तो आई, सुखी तो हुआ, लड़का जन्मा ता तो राजी हो गया, पेड़ा बेचा, क्या पेड़ा मिठाई पेड़ा बाटे, लड़का जन्मा, दूसरे दिन लड़का मर गया, दुखी हो गया। ऐसे परिणाम जन्मता है ने परिणाम मरता है। मैं अविनाशी हूँ, मैं जन्मता भी नहीं ने मैं मरता नहीं, ऐसा ध्रुव परमात्मा का अवलंबन करने से आनंद ही आनंद आता है। और आचार्य भगवान फरमाते कि मैं वो बात कहता हूँ अनुभव से प्रमाण करना, टेस्ट केस तो कर, तेरा कुछ गया तो नहीं, आज तक तो परिणाम में अहम बुद्धि किया, एक क्षण भर तो ध्रुव में अहम बुद्धि तो कर ले, देख तो सही कि मेरी मैं कहता हूँ वो बात सही है कि टेस्ट कर ले, छोड़ देना बस। और दूसरे मिठाई वाले के वहां जाता है ना, मुंबई मुंबई में एक रमन विठल मिठाई वाला, अरे मेवा वाला है, बहुत साल पहले की बात मैं बताता हूँ, अभी तो थोड़ा महंगाई होगी जो थोड़ा उसमें फेर फाड़ हो, तो पहला वो जो बादाम की पूरी, काजू की पूरी नहीं, बादाम की आखी पूरी देते थे, आप चाखो मेरा माल, आप स्वाद लो, अच्छा लगे तो लेना नहीं तो नहीं लेना। ऐसे आचार्य भगवान फरमाते हैं कि हमेरा जो माल है उसको टेस्ट कर ले, जो आपको सही लगे तो ध्रुव का अवलंबन तो छोड़ेगा ही नहीं, हमको तो मालूम है, हमको तो है हाँ चक तो सही, सैंपल तो चक जीव पर रख। हाँ हाँ एक समय में जाती है मगर ऐसा भी योग्यता हो कि थोड़ा टाइम अभ्यास करते करते वो बीमारी चल जाती है। कोई तो ऐसा रोग है कि जल्दी बीमारी का एक परिका में साफ हो जाता है, अने कोई ऐसा रोग हो रोगी तो उसको डॉक्टर साहब कहते हैं कि 15 दिन दवा लेनी चाहिए, 3 महीना लेनी चाहिए। मेरा डॉक्टर है बोरा जी, इधर आते हैं, हाँ वो कहते थे
बोरा जी ने ये नहीं कहा कि आपको यहीं रुकना चाहिए इलाज करने के लिए
उसने कहा था कि 15 दिन तो रुको, पहले थी हो पहले से कहा था कि ट्रीटमेंट के लिए 15 दिन तो चाहिए। अच्छी उसका रास्ता निकाला कि रोज एक बैठक सिटिंग करे तो 15 दिन चाहिए, एक दिन में दो करे तो 7 दिन में पूरा हो जाता है, ऐसा रास्ता निकाल दिया मरी बात ऐसी बात है
बाद वाली बात आपके घर की है
एक प्रश्न है, क्या आत्मानुभव करने के लिए कोई निश्चित समय है? दिन में 3 टाइम सामायिक करने का विधान है तो उससे क्या आशय है? वही टाइम आत्मानुभव करेंगे वैसे भी कर सकते हैं?
नहीं, उसका टाइम का पाबंदी नहीं है, मगर 3 टाइम सामायिक का जो प्रयोग करता है वो सामायिक में शुद्धात्मा का चिंतन करता है तो वो सब बाह्य की प्रवृत्ति छूट जाती है। तो प्रैक्टिस करता है आत्मा का अनुभव करने के लिए, वो प्रैक्टिस करता है, उसमें कोई दोष नहीं। क्योंकि बाहर की प्रवृत्ति बंद हुआ कि सामायिक में बैठे तो टेलीफोन आवे तो भी वो उठावे नहीं, और बाहर का कोई आवे तो भी बुलावे भाई सामायिक में बैठा है मौन है बुलाना नहीं। तो उस सामायिक में तो भेद ज्ञान का बार बार विचार करके आत्मा की ओर जाने की प्रैक्टिस का नाम सामायिक है। मिथ्या दृष्टि के लिए सचमुच सामायिक तो है नहीं, निश्चय नहीं है, व्यवहार भी नहीं है, तो भी सामायिक नाम पाकर भी जो बैठे दो घड़ी शांति से तो अच्छा तो भी अच्छा है ने? कि वो स्वाध्याय करे, विचार करे, चिंतन करे, सुना है आत्मा क्या है ऐसा विचार तो करे, प्रैक्टिस है वो। प्रैक्टिस करने की निषेध नहीं है।
ये प्रैक्टिस जो है वो दो घड़ी के लिए चुपचाप बैठे तो ही हो सकती है कि जीवन में खाते पीते और दूसरे कार्यों में प्रवृत्ति हुई भी अनुभव की कोई प्रैक्टिस हो सकती है।
देखो बाह्य की प्रवृत्ति रुक जावे और दो घड़ी बैठे तो सब बाहर का जो उपयोग है वो उपयोग छूट जाता है, उपयोग एक में लगता है, इतना फायदा है
बस,
इतना फायदा। सब बात को संभाल संभाल कर विचार करके
समझना चाहिए
ताकि सामायिक के काल में सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। नहीं, शांति से बैठकर विचार करे तो
निमित्त
उसमें स्थिरता आती है, उसमें स्थिरता मन वचन काया का योग शांत हो जाता है।
निमित्त नैमित्तिक और उपादान उपादेय संबंध का क्या अभिप्राय है, कृपया स्पष्ट कीजिए।
उपादान उपादेय का अर्थ ये है, निमित्त नैमित्तिक का संबंध यह है कि निमित्त की सापेक्षा से परिणाम को नैमित्तिक कहा जाता है, निमित्त की सापेक्षा से नैमित्तिक कहा जाता है परिणाम को, और निमित्त से निरपेक्ष एकीला उपादान की ओर देखो तो उपादान की अपेक्षा से वही परिणाम का नाम उपादेय है। परिणाम एक है, नाम जुदा जुदा है, निमित्त सापेक्ष है नैमित्तिक और निमित्त निरपेक्ष है उसका नाम उपादेय हो जाता है ऐसा।
वो ग्यारहवें गुण स्थान वाला फिर से प्रश्न आया है कि जो जीव पुरुषार्थ करके ग्यारहवें गुण स्थान तक चढ़ गया और वापस नीचे गिर जाता है तो वहां पर वो जीव पुरुषार्थ करके रुक नहीं सकता क्या, ऐसी क्या कमजोरी है कि जो पर्याय के अधीन हो जाता है।
ओ भैया केवड़ी गम्य है, आखिर तो ग्यारहवें गुण स्थान से जो गिरता है वो तो ग्यारहवें गुण स्थान का ख्याल ज्ञान भी केवड़ी भगवान को होता है, और गिरता है उसका भी ज्ञान उसको होता है, मगर गिरता है तो इतनी सही कि स्थिरता थी कि अस्थिरता में आ गया, अस्थिरता में आवे तो श्रद्धा तो रह सकती है मगर श्रद्धा छूट जाती है, कोई को सबको नहीं, तो पहला गुण स्थान सब भी आ जाता है। अभी निगोद में जीव है ने, निगोद में उसमें उपशम श्रेणी से पढ़ने वाला भी अभी है, उसमें बाहर निकल कर बाद में मोक्ष हो जाएगा। अरे उपशम तो क्या, एक समय में सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन स्पर्श हो गया, अल्प काल में उसकी मुक्ति होती है। होता है अस्थिरता हुए तो चारित्र भ्रष्ट होता है और विपरीतता हुए तो श्रद्धा से भ्रष्ट हो जाता है,
परिणाम की स्वतंत्रता
है।
एक प्रश्न आया है, जैन दर्शन का मूल आधार सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ की सिद्धि कैसे होती है, शास्त्र आधार के अलावा और कोई उपाय है सर्वज्ञ स्वीकार करने का।
हाँ बराबर स्वीकार करने का है कि सर्वज्ञ, क्या शब्द आया
सर्वज्ञ
आया कि नहीं, सर्व को जाने सो सर्वज्ञ, सर्व को जाने तो सर्वज्ञ, तो ये सर्वज्ञ स्वभाव सर्व को जाने तो सर्वज्ञ, अने मैं थोड़ा पदार्थ को जानू तो मैं भी ज्ञाय की हूं, ऐसा अपना ज्ञान से अपना थोड़ा विकास है तो पूर्ण विकास वाला होना चाहे अपना ज्ञान से वो मालूम हो जाता है कि थोड़ा ज्ञान वाला उगाड़ वाला, कोई ज्यादा इससे ज्यादा, ऐसा होता है ना ज्ञान का उगाड़। तो जो पूर्ण ज्ञान जिसको हो उसका नाम सर्वज्ञ केवली परमात्मा है, ज्ञान की तारतम्यता से नक्की हो जाता है। बाकी सचमुच तो ज्ञान आत्मा की अभिमुख होता है, सर्वज्ञों को जानता है तो सर्वज्ञों को जानता है। एक सर्वज्ञ को जाना तो उसके अंदर दो सर्वज्ञ को जान लिया उसने, निश्चय और व्यवहार शोर पर ऐसा आता है। अभय कुमार जी ऐसी बात शास्त्र में गुड बात रहस्य ऐसा है कि नागसेन आचार्य हो गया
जी।
उसका एक तत्वसार नाम का
तत्वानुशासन
नाम का एक छोटा शास्त्र उसने लिखा है। उसके टाइम में क्या हुआ कि निर्विकल ध्यान उसको आ गया, आत्मा की भावना। तो निर्विकल ध्यान के अंदर उसका ज्ञान की इतनी निर्मलता हो गई कि भविष्य में केवल ज्ञान होने वाला, मोक्ष होने वाला, इसका ज्ञान वर्तमान में हो गया। केवल ज्ञान का ज्ञान शुद्ध ज्ञान में हो गया, केवल ज्ञान नहीं हुआ, केवल ज्ञान का ज्ञान हुआ। सब विकल्प में आते शिष्य को कहा कि मैंने तो आज अरिहंत भगवान का दर्शन कर लिया। तो शिष्य ने प्रश्न कहा क्या कि ये तो पंचम काल है, पंचम काल में तो अरिहंत होता नहीं, ये चौथा काल में होता है, हम और आप तो मुनि पंचम काल का है तो अरिहंत तो है नहीं। उसने उत्तर दिया कि ये मृग जड़ की भांति झूठ मूठ नहीं है, झूठ मूठ नहीं है। तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि उसका थोड़ा खुलासा करो, मेरी समझ में आवे ऐसा खुलासा करो। तो श्री गुरु ने फरमाया नागसेन मुनि ने कि सुन, सम्यक ज्ञान को नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, नहीं वो तो नहीं का विषय निक्षेप होता है, नहीं का विषय, विषय का नाम निक्षेप। तो आत्मा भी पदार्थ है, आत्मा भी पदार्थ है। तो ये नहीं के द्वारा जब मेरा आत्मा का अनुभव में चले गया तो द्रव्य निक्षेप से भावी पर्याय वर्तमान का ज्ञान मेरे को हो गया। द्रव्य निक्षेप में होता है कि भूत और भावी का ज्ञान वर्तमान में हो जाता है। तो द्रव्य निक्षेप से मैंने अरिहंत का दर्शन आज कर लिया। और दो जगह समयसार में भावार्थ लिखा है, वहां भी जयचंद पंडित ने ऐसा लिखा है कि जब आत्मा ज्ञानी अपनी शुद्धात्मा की भावना करता है, भावना का अर्थ एकाग्रता ध्यान, यशपाल जी भावना का अर्थ विकल्प नहीं, अपनी भावना में जाता है अंदर में, तो ऐसा हो जाता है कि जाने साक्षात केवल ज्ञान हो गया। ऐसा दो जगह जयचंद पंडित ने लिखा है। दूसरा एक श्रीमद राजचंद्र जी हो गया, उसने तीन बात लिखी है कि विचार दशाए केवल ज्ञान हो गया, मुख्य दशाए मुख्य नहीं से केवल ज्ञान हो गया, इच्छा कोई तीन चार शब्द है ऐसा है। ऐसा ये बात ऐसी है कि वो अचिंत्य ज्ञान की जो ताकत है वो अचिंत्य है। सर्वज्ञ को जान लिया तो उसने सर्वज्ञ को भी जान लिया। बात तो ऐसी है, केवल कोरा अनुमान से वो बात चलती नहीं है,
अनुभव पूर्वक ही सर्वज्ञ को जाना जा सकता है, ऐसा आप कहना चाहते हैं?
अनुभव पूर्वक ही सच्चा तो यही बात है, बाकी तो आगम से युक्ति से जान सकते हैं। निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, अपना सर्वज्ञ को जाना, उसने अरिहंत सिद्ध को जाना, ऐसी बात है।
आपने जीव तत्व के दो भेद किए, दस प्राण वाला और भाव प्राण वाला।
हाँ।
तो ये दस प्राण वाला जीव अशुद्ध जीव है ऐसा आपने कहा।
हाँ।
परंतु नौ तत्वों में देखते हैं कि पाप पुण्य व आश्रव को जीव तत्व से भिन्न दर्शाया गया है।
हाँ।
इससे ये सिद्ध हुआ कि जीव तत्व तो शुद्ध रहा फिर दस प्राण वाला जीव तत्व तो अशुद्ध कैसे हो गया, क्योंकि वो तो पुण्य पाप से भिन्न है ना।
हाँ, पुण्य पाप से भिन्न है। पुण्य पाप में तो अकेला पुण्य पाप लिया, मगर जो वो दस प्रकार का प्राण लिया उसमें पांच इंद्रिय लिया, भाव इंद्री उगाड़ सूक्ष्म लिया, वो पुण्य पाप ने नहीं आया, वो पुण्य पाप तत्व में नहीं आया है, इसलिए अलग ले लिया पांच इंद्रिय का उगाड़ और मन बल वचन बल काय बल वीर्य गुण के पर्याय लिया और श्वासोश्वास और आयु जुदा लिया। तो दस प्रकार का जो प्राण है ये पर्यार्थिकनी का विषय है, व्यवहारनी का विषय है, वो निकल जाने वाली चीज है, अपना स्वभाव नहीं है। क्योंकि सिद्ध परमात्मा होता है तब दस प्राण होता नहीं है, निकल जाने वाली, इसलिए उसका व्यवहार जीव कहा जाता है, अशुद्ध जीव कहा जाता है। पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक में कहा जाता है, अशुद्ध पारिणामिक भी कहा जाता है। उससे अलावा जो जीवत्व शक्ति से चैतन्य प्राण से जीता है वो शुद्ध जीव है, वो उपादेय है, व्यवहार जीव है। व्यवहार जीव जीवादि तत्व है ही है, तो जीव में पुण्य पाप तो है मगर जीवादि तत्व है, तो जीवादि में जीव स्वभाव ही नहीं है, वो दस प्रकार का प्राण है ही। प्रश्न तो उठता है,
तो दस प्रकार के प्राण में भी आखिर पुद्गल का संयोग की बात आती है ना, इसलिए वो
वहाँ पुद्गल का संयोग न लेकर पारिणामिक भाव में डाला है। पारिणामिक भाव कर्म का विवक्षा अपेक्षा न कर, जैसे उपादान उपादेय निमित नैमिति का आपने प्रश्न किया ना भी, ऐसे वहाँ कर्म का संयोग संबंध न लेकर वो सहज चार प्रकार का प्राण से केंद्रीय जीता है, छह सात आठ नौ दस, दस प्रकार का प्राण संगनी पचिंद्री को होता है। वो निकल जाने वाली चीज है, वो उपाधि है, वो जीव नहीं है, जीव की उपाधि है। वो निकल जाए वो चीज मेरी सिद्ध के सामने देख लेना, जो सिद्ध में है वो मेरे में है, जो सिद्ध में नहीं है वो मेरे में नहीं है।
देव शास्त्र और गुरु का मोक्ष मार्ग में कहाँ तक योगदान है?
देव गुरु शास्त्र अपना उपकारी है, जो रास्ता बताते हैं, मार्ग बताते हैं, जो अजान है आत्मा का तत्व का, अजान जीव है अज्ञानी, उसके लिए देव गुरु शास्त्र उपकारी है, उसका उल्लंघन लेना, वो जो फरमाते हैं ऐसा अपनाना, ऐसे जे जे करना मात्र नहीं, बंधन मात्र से काम नहीं चलेगा। देव गुरु और शास्त्र तीन उपदेशक है ने, वो सर्वज्ञ मूल वक्ता है ने, और शास्त्र उसकी जिनवाणी क्या कहा, जिनवाणी के द्वारा अपना स्वरूप का ख्याल आता है, और प्रत्यक्ष गुरु उसकी वाणी के द्वारा भी ख्याल आता है, तो उपकारी है तीनों, वो पूजनीक है वंदनीक है।
इस सामायिक के बारे में एक प्रश्न और आया है कि आपने अभी फरमाया कि तीनों काल की सामायिक मिथ्या दृष्टियों को प्रैक्टिस के लिए है।
हाँ, वेद ज्ञान का विचार करे हाँ। तो ठीक है, बाकी दुकान का विचार हो जावे तो सामायिक कहाँ ठिकाना रहा।
तो भाई साहब उसमें से ऐसा अर्थ निकालते हैं कि तो क्या तीनों काल की सामायिक करने वाले मुनिराज मिथ्या दृष्टि है?
जहाँ तक भैया अनुभव नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, तहां तक द्रव्य लिंगी मुनि भी ऐसा आगम पुकार करता है, ऐसा आगम पुकार करता है। मैं तो नया दिगंबर हूं, आप तो जूना दिगंबर। लो टोरमल जी साहब ने भी साफ लिखा है, बोलो मिथ्या दृष्टि ही है, जहां तक अनुभव नहीं है द्रव्य लिंगी मुनि यार बने, और नवमी गेहक भी, नवमी गेहक भी जावे, इस पे क्या हुआ। आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, बाय का त्रप बहुत करे, बहुत समय सार में आता है, हम तो थोड़ी थोड़ी बात कहते हैं, थोड़ा भड़क न जावे इसलिए।
नहीं, यहाँ सब शांति से सुनने वाले साहब, आप तो पूरा कहिए, कोई कसर मत लगाइए आप। वैसे ही वो पूछते हैं कि अवरत सम्यक दृष्टि,
मेरा जो है ने पद्धति, सबकी पद्धति प्रकार जुदा जुदा है।
हाँ जी,
तो मेरी प्रकृति है ऐसी है कि अस्थि से बात करना,
बहुत अस्थि
से बात करना, किसका निषेध की बात नहीं करना, ऐसी हमारी सहज प्रकृति, सहज प्रकृति।
इसी प्रकार का एक प्रश्न है कि अव्रत सम्यक दृष्टि को क्या
हो तो आखिर में भले मिथ्या दृष्टि हो तो भी भगवान है। ये भगवान है तो उसकी टीका क्या करना। सब भगवान है, गुरुदेव ने हमको सिखाया है कि सब भगवान है। पर्याय को मत देख, शरीर को उसका शरीर को मत देख, उसमें जो विरोध करता है देव गुरु शास्त्र का, वो विरोध के पर्याय को मत देख, वो भी भगवान है। टाइप हो गया।
हाँ
बोलो, परोपकारी श्री सद्गुरुदेव।